अभिमन्यु ने गुस्से में अपनी माँ से इस शादी के लिए मना कर दिया था। ये बात पता चलने पर उसके चाचा चाची पल्लवी और नरेंद्र दोनों ही बहुत खुश हुए। तभी उनकी दोनों बेटियां उनके कमरे में आ गईं। नरेंद्र ने बिना ध्यान दिए आगे कहा, अब अगर अभिमन्यु ने शादी के लिए मना कर ही दिया है तो हमें भी अपनी योजना बनानी चाहिए। जितनी जल्दी हम अपनी योजना को अंजाम देंगे उतनी ही जल्दी हमें सत्ता। नरेंद्र अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि उसकी बड़ी बेटी कियारा बीच में बोल पड़ी, मासा बाबा सा आप लोग क्या कह रहे हैं, भाई सा ने शादी के लिए मना कर दिया लेकिन क्यों? कियारा की आवाज सुनकर पल्लवी ने दरवाजे की ओर देखा। वहां अपनी दोनों बेटियों को देखकर पल्लवी और नरेंद्र कियारा और अपनी छोटी बेटी अदिति की ओर हैरानी से देखने लगे। वे दोनों एकदम अचानक वहां आ गई थीं। उनकी छोटी बेटी अदिति ने उदासी से कहा, अगर भाई सा शादी के लिए मना कर रहे हैं तो इसका मतलब अब हम नया डिजाइनर लहंगा नहीं खरीद पाएंगे और वो सारी डायमंड ज्वेलरी जो हमने सेलेक्ट करके रखी हुई थी। ताइसा ने बोला था कि शादी पर वो खुद हमें शॉपिंग करवाएंगी लेकिन अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि शादी ही नहीं हो रही। अदिति की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कियारा ने उसे डांटते हुए कहा, चुप करो अदिति, शादी नहीं हो रही है ये पहले ही इतनी बड़ी बात है और तुम्हें अभी भी कपड़ों और गहनों की फिक्र है। कियारा के डांटने पर अदिति मासूमियत से अपनी माँ की ओर देखने लगी। अपनी बेटियों की बात सुनकर नरेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, खुश हो जाओ तुम दोनों क्योंकि अब अगर अभिमन्यु शादी नहीं करेंगे तो उनका राज्याभिषेक भी नहीं होगा और फिर हम बनेंगे राजवंश के अगले राजा और तुम दोनों राजा सा की राजकुमारियां। कियारा ने ये बात सुनते ही उनके पास आकर कहा, भाई सा ने शादी करने से मना किया तो आप लोगों को उन्हें समझना चाहिए और आप लोग यहाँ अपनी अलग ही योजना बना रहे हैं, हमें नहीं लगता ऐसा करना सही होगा। ये बात सुनकर पल्लवी ने उसे डांटते हुए कहा, कियारा तुम्हें पता भी है कि हम लोग कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज जब वो दिन आया है तो तुम हमें ऐसा करने से रोक रही हो। कियारा ने कहा, मासा क्योंकि ये गलत है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, आप लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर इस तरह से प्लानिंग करके आप लोगों ने भाईसा की जगह ले भी ली तो क्या हम सभी एक परिवार की तरह खुश रह पाएंगे? नरेंद्र ने कियारा की बात सुनकर उसे डांटते हुए कहा, कियारा अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि इन सब मामलों में दखल देती रहो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहो और अपने भाईसा की तरफदारी थोड़ी कम करो। नरेंद्र ने ये बात बड़े गुस्से से कही और कियारा को आंख दिखाई। पल्लवी ने नरेंद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दीजिए, हम कियारा को समझा देंगे। कियारा अदिति तुम दोनों अभी अपने कमरे में जाओ और आइंदा बड़ों के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कियारा अपनी माँ और बाबा सा की बात सुनकर वहीं रुकी। वो उन्हें कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी अदिति ने कियारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए दी हमें यहाँ से चलना चाहिए। अदिति ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती अपने माता पिता के कमरे से बाहर ले आई। अदिति वहाँ कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस शादी के फंक्शन से मतलब था जो अब नहीं हो रहे थे। वो पहले ही बहुत मायूस हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो अपनी बड़ी बहन को डांट खाने के लिए वहाँ नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसे अपने साथ ले आई। अपने माता पिता के कमरे से बाहर आते ही कियारा ने गुस्से में अपना हाथ अदिति के हाथ से छुड़ाया और बोली, हाथ छोड़ो अदिति, और तुम क्यों मुझे वहाँ से लेकर बाहर आ गई, तुम्हें भी पता है वे लोग गलत कर रहे हैं। अदिति ने जवाब दिया, नहीं हमें सही गलत कुछ भी नहीं पता है और ना ही हम पता करना चाहते हैं, इसके अलावा वे हमारे माता पिता हैं, हमसे बड़े हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं बोल सकते और ना ही तुम, इसलिए जैसा कि माँ ने कहा इन सब चीज़ों से दूर रहो तुम भी क्योंकि हम तो पहले ही इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते। अदिति की बातें सुनकर कियारा ने गुस्से में उसकी ओर देखा और फिर अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। उसके जाते ही अदिति का मोबाइल फ़ोन बज गया और अदिति ने तुरंत फ़ोन कॉल रिसीव कर ली और बात करते हुए वो भी वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर मासा अपने कमरे में बैठी थी, वो अभिमन्यु की बात से बहुत परेशान हो गई थी। अभिमन्यु ने शादी के लिए मना कर दिया था, ये बात उनके दिमाग में बार बार आ रही थी। उन्होंने बहुत परेशान होते हुए खुद से कहा, अभिमन्यु कभी भी हमारी बात नहीं टालते लेकिन अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। वो इतना सोच ही रही थी और उन्होंने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, वजह वजह और क्या ही वजह हो सकती है, इप्सिता के बारे में वो इतना सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी वजह इप्सिता ही हुई। अच्छी बात है उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में इतना सोचा लेकिन उस लड़की के लिए वो अपनी मासा के खिलाफ खड़े हो जाए ये भी तो सही नहीं है, वो भी उस लड़की के लिए जिसे हमने खुद चुना है। अभिमन्यु तो उससे पहले से जानते भी नहीं थे तो फिर क्या हुआ अचानक से ऐसा उनके बीच? अभिमन्यु की माँ सारी रात इसी बारे में सोचती रही, उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अभिमन्यु ने शादी और राज्याभिषेक दोनों के लिए मना कर दिया था। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर शादी नहीं होगी तो राज्याभिषेक तो हो ही नहीं सकता, इसी बात को सोचकर उनकी टेंशन और भी बढ़ गई थी। मासा ने रात भर इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा, वो अभिमन्यु के स्वभाव को भी अच्छी तरह से जानती थी कि वो कितना ज़िद्दी है, अगर उसे अपनी कोई बात मनवानी होती है तो वो हमेशा ऐसा ही करता था। रानी सा ने अपने आप से कहा, अगर अभिमन्यु इस बात को लेकर इतनी ज़िद कर रहे हैं तो वो ज़रूर अपनी ज़िद पूरी करके ही रहेंगे और अगर उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो हमने जो कुछ भी सोचा है वो सब बर्बाद हो जाएगा और हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं, इसलिए हमें कल सुबह ही अभिमन्यु से इस बारे में बात करनी होगी। इतना बोलकर मासा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गईं, लेकिन इस बारे में सोचते हुए उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह जैसे ही उनकी आंख खुली वो फ्रेश होकर सबसे पहले अभिमन्यु से बात करने के लिए गईं।
उन्होंने अभिमन्यु के कमरे की ओर जाते हुए कहा, हमें जल्दी अभिमन्यु से बात करनी होगी, क्योंकि अगर अभिमन्यु ऑफिस चले गए तो फिर हम उनसे बात नहीं कर पाएंगी। इतना बोलते हुए मासा सीधे अभिमन्यु के कमरे के बाहर पहुंची और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अभिमन्यु ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था, जैसे ही उसने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी वो तुरंत दरवाजा खोलने के लिए आ गया। उसने जैसे ही दरवाजे पर मासा को खड़ा देखा, उसे कल रात की सारी बातें याद आ गईं और उसने मासा से अपनी नजरें चुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मासा। मासा उसे ऐसा व्यवहार करते देखकर बोली, क्या हम अंदर आ जाए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और मासा अभिमन्यु के कमरे के अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई। अभिमन्यु उनके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, बताइए मासा, क्या बात है। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात पूछी तो मासा ने थोड़ी हैरानी से कहा, अभिमन्यु आप जानते हैं ना हम यहाँ आपसे किस बारे में बात करने आए हैं। अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जानते हैं, और आपने तो कल रात में ही अपना फैसला सुना दिया था और हमें भी जो कुछ बोलना था हमने बोल दिया, तो फिर अब आप बात करने के लिए क्यों आई हैं?
मासा ने अभिमन्यु के चेहरे पर वही नाराजगी देखी जो कल रात उन्हें नजर आई थी। पूरी रात में अभिमन्यु की नाराजगी जरा भी कम नहीं हुई थी और ये बात नोटिस करते हुए उन्होंने कहा, हम जानते हैं अभिमन्यु, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता, और हमने कल रात में शायद आपकी बात ठीक से नहीं सुनी और हमने यूं ही अपना फैसला सुना दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभिमन्यु ने जैसे ही मासा के मुंह से ये बात सुनी वो बिल्कुल ही चौंक गया और हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। तभी मासा अभिमन्यु के बगल में आकर बैठते हुए बोली, अभिमन्यु बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप ये बात जानते हैं ना, और हम आपको इस तरह से उदास भी नहीं देख सकते। अभिमन्यु मासा के चेहरे की ओर देख रहा था और उसे समझ में आ रहा था कि कल जिस तरह से उसने मासा से बात की थी वो बात कहीं ना कहीं मासा के दिल में लगी थी, जिस वजह से वो आज सुबह सुबह ही उससे बात करने के लिए आ गई थी। उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। तभी मासा ने कहा, आप यही चाहते हैं ना कि आप इप्सिता को अपने साथ मुंबई लेकर जाएं, तो ठीक है, हमारी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है, आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। अभिमन्यु ने जैसे ही मासा के मुंह से ये बात सुनी वो बहुत खुश हो गया और उसने जल्दी से मासा को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मासा, आप नहीं जानती आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मासा काफी हैरान हो गई, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था, जो अभी तक मुरझाया हुआ था वो अब पूरी तरह से खिल गया था। ये देखकर मासा थोड़ी सी हैरत में पड़ गईं और उन्होंने अभिमन्यु के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको खुश देखकर ही तो हम खुश रहते हैं, तो भला सोचिए आपको उदास देखकर हम कैसे खुश रह सकते थे। अभिमन्यु मासा की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उसने मासा की ओर देखा, लेकिन अचानक से उसका चेहरा नीचे झुक गया और वो फिर से पहले की तरह ही मायूस नजर आने लगा, जैसे कि उसे कुछ और याद आ गया था। क्रमशः